ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਬਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਨਾਵੀਂ ਗੱਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਨਾਤੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਤੋ ਦਾਦੇ ਨੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਗੱਦੀ ਅਤੇ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਘਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਹਿਲਾ ਘਰ, ਦੂਜਾ ਘਰ, ਤੀਜਾ ਘਰ, ਚੌਥਾ ਘਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਕਹੀਏ, ਹੁਣ ਮਹੱਲੇ ਨਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਹੁਣ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਗਾਲਬਨ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਅਤੇ ਸੁਪਤਨੀ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਆਪ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਿਆਰੀ, ਭੋਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਆਪ ਤੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਸਨ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਲਿਆਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਤਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰੇ। ਤੋ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਜੁਟੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ 26 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਪ ਸਭ ਕੁਛ ਨੇ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਿਛਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਔਰ ਧਰਮ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੇ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੈਰਾਗ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਬੈਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਗ ਮੰਡਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਗ ਰਾਇਆ। ਆਪ ਦਾ ਭੋਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਆਪ ਦਾ ਭੋਲਾਪਣ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਅਤੇ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਆਪ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਤੋਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਵਕਤ ਦੇ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਵਕਤ ਦੇ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰਖੈਜ਼ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, اگر فردوس بر روی زمین استو ہمیں استو ہمیں استو ہمیں استو. اگر کوئی فردوس جنت بہشت سورگ زمین دیتے ہے تو پھر یہی ہے یہی ہے یہی ہے. کشمیر دے وچ جہلم دے کنڈے دیتے نور جہاں نے اے واق اچارن کیتے بس یہی جنت ہے یہی جنت ہے یہی جنت ہے. اس جنت دے چوں انیکاں ہی پانی دے جھرنے تے دریا نکل دے سن جو اگاں چل کے میدانی علاقیاں نو سرسبز کر دے سن شاداب کر دے سن. صرف پانی دے جھرنے اتھو نہیں نکل دے سن, کشمیر دے چوں گیان دے جھرنے بھی نکل دے سن. گیان دی گنگا بھی پھٹ دی سی. کشمیر رشی کشیپ دی اولاد دا دیش, رشی منیاں دا دیش, تیرتھاں دا علاقہ, ودوان پنڈتاں دی بھومی. جس طرح اچے پہاڑا تو جھرنے تھلے آ کے دریا تھلے آ کے میدانی علاقیاں نوں سرسبز کردے سن, اس طرح پہاڑا تو تھلے لے کے اے ودوان جگت دا کلیان کردے سن گیان دے کے وچار دے کے اور اس طریقے نال رب نال جوڑ دے سن. وقت دے ستاداری پانی دے جھرنیاں نوں تے بند نہ کر سکے تے بند کرنا انہاں نے مناسب بھی نہ سمجھیا, پر گیان دے دھارا جو اتھوں وگدی سی انہوں بند کرن دا تہیا کر لیا. گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دے دربار دے کشمیر دے دریا کشمیر دے جھرنے فریاد لے کے آئے. جنہاں دے دل دماغ چو گیان دی گنگا نکل دی سی, نام دے جھرنے چل دے سن, وچار دے چشمے وگ دے سن, اے سارے چشمے اے سارے جھرنے اج دربار دے آنندپور صاحب آ کے حاضر ہوئے نے, بینتی کردے نے جودڑی کردے نے, گرو مہاراج رحمت کرو بخشش کرو سکھ جاواں گے. اگر اے مرو تھل دے ٹبے سڈے اگوں آ گئے ستا دے تو سکھ جاواں گے, نیست و نابود ہو جاواں گے, سڈا گمن بند ہو جائے گا تے اسی رستے چ کئیاں دی پیاس بجھاندے ہوئے جو ساگر دے چ لین ہونا اپنا لکش سمجھے ہے اس لکش دی پورتی نہیں ہو سکے گی تے جگت دی اسی پیاس بھی نہیں بجھا سکاں گے. گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج لمبی سوچ دے چ پے گئے, خاموش بھورے دے چ بیٹھ کے جو آپ یونت بناندے رہے جگت کلیان دی او ایک دم آپ دے سامنے آئی. آپ اجے سوچ ہی رہے سن کہ 9 سال دے بالک شری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے اجے آپ گوبند رائے نے بینتی کی تھی, حضور گردیو پتا آپ کس سوچ دے چو؟ تاں گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج نے آکھے بیٹا کوئی مہان منک کوئی مہان سنت اپنی قربانی دے وے دیش دا دھرم بچ سکتا ہے, انہ جھرنیاں دی روانی بچ سکتی ہے, انہ دریاواں دا ویگ بچایا جا سکتا ہے. گوبند رائے ہاتھ چوڑ کے کہن لگے, مہاراج جے کسے مہان پورن پرخ دی قربانی نال ہی یہ سب کچھ بچتا ہے تو پھر آپ تو مہان کون ہے تے آپ ہی بچاؤ. کھڑاواں پہن کے گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج چل پے, تیاگ تے ویراگ آپ دے روم روم وچ بھرے ہویا ہے. حقیقت ہے بہت وڈی سچائی ہے کہ ویراگ تو بنا پرماتما دی پراپتی نہیں, اکال پرکھ دی پراپتی نہیں. بیراگی ہردا کوئی محسوس کردا ہے جگت کچھ بھی نہیں ہے, اے سنسار کچھ بھی نہیں ہے. جد سنسار کچھ بھی نہیں جگت کچھ بھی نہیں وہ پھر اداس رہے گا, اپرام رہے گا. اپرامتا تے اداس ہونا دھارمک دنیا دا پہلا لکشن ہے اور شبھ لکشن ہے. جو جگت تو اداس نہیں ہویا اپرام نہیں ہویا وہ پرم جگت دی پراپتی دی چیشٹا بھی نہیں کرے گا. جو سنسار تو اپرام نہیں ہویا وہ نرنکار دی پراپتی دا ادم بھی نہیں کرے گا. یہ حقیقت ہے جے دے لئی یہ سنسار سب کچھ ہے اس دے لئی نرنکار سپنا ہے, تے جے دے لئی یہ سنسار تچھ ماتر ہے سپنا ہے وہ دے لئی پرماتما حقیقت ہے, وہ دے لئی پرماتما سچائی ہے. دو طرح دے منک جگت وچ ملن گے, کسے لئی سنسار سپنا ہے کسے لئی نرنکار سپنا ہے, کسے لئی پدارت سپنا ہے تے کسے لئی پرماتما سپنا ہے. انج کہہ لو سنتاں لئی پدارت سپنا ہے تے عام سنساریاں لئی परमात्मा सुपना है। ते जो सुपना है उहदे नाल की जुड़ना, जो सुपना है उहदे उत्ते की माण करना। तो कईआं दी दृष्टि विच परमात्मा सुपना है ते कईआं दी दृष्टि विच पदार्थ सुपना है। ते जद पदार्थ सुपना प्रतीत दिखाई दे, जद संसार तुच्छ मात्र प्रतीत होवे, तो उदास होना लाजमी है, फिर उपराम होना लाजमी है। साडे देश दे साधु संत महात्मा कोशिश करते रहे कि अंदर उदासीनता का जन्म होवे, बैरागी बिरतियां का जन्म होवे, उपरामता का जन्म होवे। किसी उजाड़ दे चले जाइए, जंगल दे चले जाइए, जिथे कोई मनुख ना होवे गलबात करन वाला, जिथे चारों पासे वहशत ही वहशत होवे, तनहाई ही तनहाई होवे। ओ तनहाई, ओ उजाड़ मन नूं उपराम करे, उदास करे, ताकि निरंकार की प्राप्ति अंदरों पैदा हो, ताकि ईश्वर की प्राप्ति की धुन, ईश्वर प्राप्ति की लगन अंदरों जन्म ले सके। आदि काल तो साडे देश दे इस तरह के लोग घर बार नूं छड़ के, बाजार महल माड़िया नूं छड़ के, गोशा तनहाई पहाड़ां दियां कंधरां ते बियाबान जंगलों में जाते रहे, महज इस वास्ते कि उदासीन बिरति पैदा हो, उपराम बिरति अंदर उजागर हो। गुरु नानक देव जी महाराज के एक साहबजादे का नाम बाबा श्री चंद, जिन्होंने इस देश दे उदासीन परंपरा को जन्म दिता और आप दे साधुओं उदासी साधु करके आख्या जाता है। और ये उदासीन संपर्दा अज भी मौजूद है, जिसने गुरबाणी का महान प्रचार देश देशांतरां दे किया। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते हैं कि उजाड़ विच जाके, बयाबान जंगल विच जाके मन नूं उपराम करना है, उदास करना है। उस तो बेहतर है घर नूं ही जंगल समझ लिया जाए, घर नूं ही उजाड़ समझ लिया जाए। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सवै कर समझो, मन ही माए उदासा। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज उपराम उदास ते बैराग की मूर्ति सन। जगत विच कुछ भी ऐसा नहीं कि आप नूं खिंच लवे, आप जगत तो उच्चे जीवदे सन, लेकिन जगत तो बिरतियां उच्चियां हो सकन आपने जंगल विच जाना मुनासिब नहीं समझिया। आप साफ कहंदे ने, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। वो जो व्यापक है, वो जो सर्व व्यापक है, वो जो रोम रोम विच वसिया होया है, वो ते तेरे कोल है, बन विच कित्थे जाना है। सर्व निवासी ते सदा अलिप्त, ये दो शब्द ऐसे ने जो खोज दे मुस्तहिक ने। जो व्यापक है, सर्व निवासी है, वो अलिप्त किस तरह रह सकता है, निर्लेप कैसे रह सकता है? जो सारियां दे विच है, निर्लेप होना ते फिर बहुत कठिन है। सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। वो मेरे विच है और निर्लेप है, वो सारियां दे विच है, वो निर्लेप है। तो आपने बड़े सुंदर दो प्रमाण दिते ने, पोप मद जो बास बसत है, मुकर माए जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। सर्व निवासी तो ऐसा है जैसे फुल दी पत्ती पत्ती दे महक है, सारे फुलां दी पत्ती पत्ती दे सुगंधी है, महक है। तो जैसे फुल दे अंदर महक व्यापक है, तेवें परमात्मा व्यापक है। पर परमात्मा निर्लेप किस तरह है? मुकर माए जैसे छाई, जैसे शीशे विच अक्स, शीशे विच हुंदा होया भी शीशे विच नहीं है, निर्लेप है। शीशे विच जो कुछ दिखाई दे रहा है, असी उन्हूं पकड़ नहीं सकते, बंधन विच नहीं लिया सकते, क्योंकि निर्लेप है। भावें शीशे विच है, फिर भी शीशे तो न्यारा है, निर्लेप है। भावें परमात्मा साडे विच है, फिर भी वह न्यारा है। अगर व्यापक हो के वह न्यारा ना आवे, तो फिर जितने असी मैले हाँ, परमात्मा हुण तक मैला हो गया, वह निर्लेप है। इस वास्ते साढ़े अंदर रहिंदा होया भी वह निर्मल है, स्वच्छ है। डॉक्टर रविंद्र नाथ टैगोर नूं यह बोध होया उदों, जदों आपने देखिया कि एक बहुत वड्डे गंदगी दे ढेर नूं सूरज दियां किरणां छू रही सन, तां आप न छुटे, आखन लगे, हे ईश्वर, तेरे निर्लेप होण दा बोध मिल गया। सूरज दियां किरणा गंदगी नूं छू रहियां ने, पर सूरज गंदा नहीं हो रहा, किरणा गंदियां नहीं हो रहियां। हे परमात्मा, तू मेरे गंदे शरीर मलमूत्र दे थैले च बैठा है, पर तू गंदा नहीं होंदा, तू ते निर्लेप है, तू ते स्वच्छ है, तू ते निर्मल है। तो साहिब कहिंदे ने व्यापक तू ऐसे है जैसे फुल दी पत्ती पत्ती दे च महक है, और निर्लेप तू ऐसा है जैसे शीशे विच अक्स पोप मद जो बास बसत है, मुखर माय जैसे छाई तैसे ही हर बसे निरंतर कट ही खोजो पाई। साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने आनंदपुर साहब तो गवन आरंभ किया, रोहतक हिसार हांसी, फिर इथों गवन करदे करदे आप पहुंचे ने आगरा, जिस स्थान विच आप काफी समय तक टिके उस स्थान का नाम है गुरुद्वारा माई था। बार एक चरवाहे नूं अंगूठी आपने भेंट की थी, और इस वास्ते भेंट की थी क्योंकि शाही लश्कर आप दी तलाश दे सी, ते बहुत वड्डा इनाम रखा गया सी। आपने उस चरवाहे नूं कहा, लै तू अंगूठी भी लै, ते मैनूं पकड़ाउण दा बहुत वड्डा इनाम भी प्राप्त कर। साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज नूं गिरफ्तार किया गया, और आदि काल तो सताधारियां दी ते सतवादियां दी कदी बनी नहीं, भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया, जोड़ जुड़े नहीं। सताधारी ते सतवादियां दे टकराव आदि काल तो रहा है, राम ते रावण दा टकराव, कंस ते श्री कृष्ण दा टकराव, बाबर ते गुरु नानक दा टकराव, जहांगीर ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दा टकराव, और वक्त दे सताधारी ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा टकराव, ध्रुव दा अपनी मतरेई मां नाल टकराव, ते प्रहलाद दा हरनाकश नाल टकराव, इस गल दा सबूत है कि सताधारियां ते सतवादियां दी कदी आपस विच नहीं बनी, ये दो दिशावां ही वक् वक् ने। साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज सच्चाई दे मुजस्मे सत दी मूर्ति, ते दूसरे पासे केवल सता है। सता दा मतलब है मैं दूसरे नूं जितना है, ते सत दा मतलब है मैं अपने आप नूं जितना है। हैन चाहुंदे ते दोवें ही जितना है, चाहीदा ते दोवां नूं ही कामयाबी है, सफलता जित चाहीदी है। फर्क सिर्फ इतना है, एक जगत नूं जितना चाहुंदा है, एक अपने आप नूं जितना चाहता है। एक जगत ते हुक्म करना चाहता है, एक अपने आप ते हुक्म करना चाहता है। एक जगत नूं गुलाम करना चाहता है, एक अपने मन नूं गुलाम करना चाहता है, अपने इंद्रियां नूं गुलाम करना चाहता है। लेकिन जो जगत नूं गुलाम करता है, वह किसी हद तक इंद्रियां का स्वयं गुलाम होता है, वह मन का स्वयं गुलाम होता है। इस वास्ते सारी दुनिया ते हुक्म करन वाला मनुख अपने मन ते हुक्म करना उस लई औखा हो जांदा है। ते गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, जिसका कहना उसका मन नहीं मनदा, उहदे इंद्रिय नहीं मनदे, उहदा जगत नूं जित लैणा भी फोका है, झूठ है। दरअसल जगत की जित ते इस ते खड़ी है, मन जीते जग जीत, मन की जित नाल ही जगत की जित खड़ी है। भावें मनुख बहुत कुछ काबू कर लैंदा है, लेकिन मन नूं काबू करना बहुत वड्डा कम है। ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के संबंध नाल एक बार दी रचना, मन लो चे बुरियाईयां गुर शब्दी एह मन होड़ी है। देखो मनुख ने नथ पा के बैल नूं काबू कीता है, लगाम पा के घोड़े नूं काबू कीता है, अंकुश रख के हाथी नूं काबू कीता है। अजोके युग दे च रेलां मोटरां गड्डियां मनुख दे काबू दे च ने। ये ठीक है कि रेल चलदी ते इक्को ही थां तों है जिथे इंजन है, पर रोकण दा आला ते हर डब्बे च मौजूद है। जिथे खिची चेन गड्डी रुक गई, जो चल रही है उहदा काबू दे च होना बहुत लाजमी है, वरना उस तों सुख नहीं उठाया जा सकता। पर हैरानगी दी गल, हाथी घोड़े रिछ बंदर और शेर बैल और खोते इते बंदे दे काबू च, लेकिन बंदे दा मन बंदे दे काबू च नहीं है। इत्थों ही गल स्पष्ट हो गई कि मन ओही काबू करदा है जो महाबली हुंदा है, सूरमा हुंदा है। और एक वक दिशा है। एक संसार नू जितना चाहता है, एक मन नू जितना चाहता है। संसार नू जित के धन की प्राप्ति आती है, मन नू जित के परमात्मा की प्राप्ति आती है, अकाल पुरख की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो जैसे आदि काल तो सतवादियां ते सताधारी दी नहीं बनी, गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ते औरंगजेब दी भी नहीं बनी। हिंदी दे प्रसिद्ध शायर कवि भूषण ने औरंगजेब बारे जो कुछ लिखे है वो ये है। हाथ तस्बीह लिए प्रात उठे बंदगी को, आप ही कपट रूप कपट सो जप के। आगरे में जाए दारा चौक में चिनाए लियो, छतर हूं छनायो मानो मरे बूढ़े बप के। कीनो है सगोत घात सो में ना ही कहूं फेरी, फील पर तुरायो चार चुगल के गप के। भूषण भनत छर छंदी मती मंद महा, सौ सो चूहे खाए के बिलारी बैठी तप के। हुण तू तस्बी लेके बैठा, हुण तू पंज वक्त दी नमाज पढ़दा, रोजे रखदा, पर वेख ते सही तू पिता नू कैद कीता है, बिरावां नू कतल कीता है, बरजाइयां नू कैद कीता है, और अगाहों चल के इसने अपने पुत्र बहादुर शाह नू भी कैद कीता। किधरे बिरावां दी तरह प्यो दी तरह ये पुत्र भी वारस बनन की कोशिश ना करे। राजनीति ते स्वार्थ ते खड़ी है, ते धर्म पर स्वार्थ ते खड़ा है। धर्म दा ते मतलब है दूजियां दे हित लई सोचना, राजनीति दा मतलब है अपने हित लई सोचना। तो स्वार्थी होवेगा तो सतवादी ते सताधारी दा टकराव होया। इस टकराव दे वक्ती तौर ते हमेशा सतवादी हारदे आए ने। संसार दा इतिहास पढ़ के देखो, सत दी मूर्ति राम बन बन दियां ठोकरां खा रहे ने, पर झूठी मंत्रा ते कह कई सिंघासन ते बैठी महलां विच बैठी। सच दी मूर्ति प्रहलाद जेल दी तंग तारीख कोठड़ी दे चै, पर झूठा हरनाकश सिंघासन ते बैठा। सच ते बैराग दी मूर्ति ध्रुव जंगलां दी ठोकरां खा रहा है, साधना कर रहा है, पर झूठी मतरेई मां महलां विच बैठ के ऐश कर रही है, आराम कर रही है, सुख मान रही है। अगां चलिए देवकी ते वासुदेव जो प्रेमा भक्ति दी मूर्ति ने, वो कंस दी कैद विच ने, जेल दे अंदर ने, पर कंस सिंघासन ते बैठा है। जेल दी तंग तारीख कोठड़ी दे च ही सच दी मूर्ति श्री कृष्ण दा द्वापुर दे अवतारी पुरुष दा जन्म होया है। हैरानगी दी गल जद मैं इस ढंग नाल पढ़दा कि जेल दे विच ही वक्त दे सताधारियां दी जेल दे च गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ज्योति जोत समाएं, उन्हां दा अंत होया है, ते जेल दे च ही श्री कृष्ण दा जन्म होया है। ते मैनूं कहना पैंदा है सच दा जन्म होंदा है ते जेल दे च होंदा है, सच दा अंत होंदा है तो जेल दे च होंदा है। सत दी हार भी असल विच जित है, और झूठ दी जित भी असल विच हार है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल, कूड़ निखुटे नानका ओड़ के सच रही। आप दिल्ली दे चांदनी चौंक दे शहीद की होए, समुचे देश नू चानना वंड गए। सूरबीरता दा, बहादरी दा, अणख दा, गैरत दा सुती हुई कौम नू आपने जगाया। आप दी शहादत दे नाल ही सिखी दा जो स्वरूप बनया वो केशाधारी बनया, और संत सिपाही दी शक्ल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बकायदा बख्शिश कर दिती, ताकि आइंदा लई इस सत ते सता इक्को ही थां ते रहे, और सतवादी सताधारियां दे हत्थों बेजार ना हुंदा रहे, औखा ना हुंदा रहे। साहिबां दा धड़ चुक के लखी शावन जारा लियाया, और उरने अपने पिंड दे अपने मकान दे अंदर रख के मकान नूं ही अग ला दित्ती। इस ढंग नाल उसने अपना मकान गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के धड़ तो निछावर किया। उस थान ते पावन गुरुद्वारा बनया है, गुरुद्वारा रकाबगंज। सीस दा दाह संस्कार होया आनंदपुर साहब दे, उस थान दे ते भी गुरुद्वारा बनया है जिसका नाम है गुरुद्वारा सीसगंज। ते जिथे आप दी शहादत हुई उत्थे भी अस्थान बनया है चांदनी चौंक दे गुरुद्वारा सीसगंज। दरअसल जिसका खून पावन हो जाए पवित्र हो जाए, तो किसका खून पावन हो जाता है पवित्र हो जाता है, जिदे रोम रोम दे अंदर परमात्मा वसिया होवे, ईश्वर वसिया होवे, अकाल पुरख वसिया होवे। जैसे नामदेव जी महाराज कहिंदे ने, दस बै रागन मोहि बस कीनी, पंचों का मिटनाओ, सत्तर दोए भरे अमृतसर, बिख को मार कढ़ाओ, पाछे बहुर ना आवन पाओ। ये जो बहत्तर मोटियां नाड़ा ने, नामदेव कहिंदे ने खून नहीं गर्दिश कर रहा, अमृत गर्दिश कर रहा। खून पाक हो गया, पवित्र हो गया, अमृत हो गया। एक शायर का कहना है, एक बूंद गर चाहे तो तूफान बन जाए, एक फूल गर चाहे तो गुलिस्तान बन जाए, एक खून के कतरे में वो तासीर है, एक कौम की तवारीख का अनवान बन जाए। अगर उछाल आ जाए सही किसी पाक पवित्र खून दे, कौम दा ते देश दा अदुती इतिहास बन जाता है, गैरत ते अणख बन जाता है, हिम्मत ते दलेरी बन जाता है। साहिबां दा ए पावन खून जिथे डुलिया उत्थों दी धरती इतनी पावन हुई है कि लोकी श्रद्धा नाल जब मत्था टेक दें तो रसना तो निकलता है, धन गुरु तेग बहादुर साहब, धन गुरु तेग बहादुर साहब। ओ अस्थान अज तीर्थ है, हर राहगीर नूं अपनी तरफ खिंचदा है, प्रेरदा है, और उत्थे बैठ के मन विच त्याग दी भावना दा जन्म होंदा है, बैराग दियां भावनावां दा जन्म होंदा है। साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा चिंतन करदे आया बैराग तारी हो जांदा है, और बैराग तारी होंदिया ही हर तरह के सुख की प्राप्ति होंदी है। तदी ते वार दे अंदर बकायदा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने लिखा है, गुरु तेग बहादुर सिमरिए घर नौनिध आवे धाय। तो नौनिध की है? परमात्मा दा नाम। नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। गुरु तेग बहादुर साहब दा चिंतन नाम दा चिंतन करा देंदा है, नाम नाल जोड़ देंदा है, और जगत तो बैरागी बिरतियां दा जन्म उजागर हो जांदा है। साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज तन करके संसार दे चलीन होए, आत्मा करके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे च जा विराजमान होए, और आप दी दसवीं जोत, गुरु नानक दी दसवीं जोत गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज होके उजागर होए, और अदुत्ती संदेश ते उपदेश आपने जगत नूं दित्ता।